साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैले जाया तेरे सहारे, अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, मेरे बाबा यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा।
जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। हमने माना जहान में बहुत रोग है, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। तुमको जीना है तो सर उठा के जियो, अपने सारे गमों को बुला के जियो, मुस्कुरा के जो हर पल गुजारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे, तुम हमारी उम्मीदों की तकदीर हो, आने वाले जमाने की तस्वीर हो, दे रही है सदा ये तुम्हें जिंदगी, आसमां को छूना है तुमको अभी, बढ़ के मंजिल उसी को पुकारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत ना हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, किसी ने कहा है आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। हमारी महानता इसमें नहीं कि हम गिर जाए, परंतु जब जब गिरे फिर से फिर उठ खड़े हो। इस संसार में अगर देखो तो जितनी भी महान आत्माएं हुई है, चाहे लौकिक चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे धर्म के, अध्यात्म के क्षेत्र में, सभी को प्रारंभिक संघर्ष से गुजरना पड़ा, असफलता से गुजरना पड़ा, चाहे लौकिक या फिर अलौकिक। दोनों सफलता बिना असफलता का अनुभव किए हो नहीं सकते। और वास्तविक व्यक्ति किसी किताब से, किसी भाषण से, किसी बाहरी स्रोत से कभी नहीं सीखता। जो कुछ वो सीखता है वो अपने अनुभव से सीखता है, अपनी नाकामियों भी से सीखता है। बीथोवेन म्यूजिशियन था, उसके म्यूजिक टीचर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, होपलेस केस, पर उसने प्रैक्टिस चालू रखी। हर दिन 12 से 14 घंटे पियानो की प्रैक्टिस, और वो इस जगत का सबसे महान संगीतज्ञ बना। एक किताब है बहुत फेमस, हैरी पॉटर, उसकी जो लेखिका है रोबलिंग, उसकी इस किताब को लगभग 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी थी, फिर भी शी परसिस्टेड। एडिसन का सबको पता है, 1000 बार फेल हुआ एक्सपेरिमेंट। उसी तरह अध्यात्म के क्षेत्र में भी बार बार व्यक्ति गिरता है, संपूर्ण निर्विकार हो जाए, ये बड़ा लक्ष्य है। संपूर्ण जितेंद्रिय हो जाए, बहुत बड़ा लक्ष्य है। सभी कर्मेंद्रिय वश में हो जाए, एक एक कर्मेंद्रिय से धोखा प्राप्त होगा और वो धोखा ही सिखाएगा, क्योंकि अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है। द रियल नॉलेज इज एक्सपीरियंस। जो लोग जगलिंग सीखते हैं, जगलिंग पता है ना, बॉल, शुरुआत में 100 बार बॉल गिरता है, 3-4 बॉल एक साथ, फिर 90, फिर 80, और धीरे धीरे अभ्यास करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर एक भी नहीं गिरता। प्रैक्टिस, अभ्यास। उसी तरह ज्ञान की प्रैक्टिस, योग की प्रैक्टिस, शक्तियों की प्रैक्टिस। तो आज की इस मुरली में बाबा ने कहा, अभ्यास की पाठशाला में बैठ जाओ या फिर प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, ये लैब है, प्रैक्टिस लैब, सत्य के प्रयोग करो, शक्तियों के प्रयोग करो, ज्ञान के प्रयोग करो, योग के प्रयोग करो। योग योग कहते हो परंतु प्रयोग कम करते हो। नॉलेजफुल नॉलेजफुल हो परंतु पावरफुल नहीं हो। व्यास बन गए हो परंतु अभ्यास कम करते हो। योगी बन गए पर प्रयोगी नहीं बने, और प्रैक्टिस में भी वैरायटी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में भी परफेक्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में भी नवीनता, और प्रैक्टिस में भी हिम्मत नहीं हारना। वॉल्ट डिज्नी बड़ा फेमस नाम है, कितनी बार रिजेक्ट हुआ, बैंकरप्ट हुआ। इब्राहम लिंकन, इसके पहले भी सुनाया है, पूरी दास्ता है असफलता की शुरुआत से अंत तक, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा जो रखते हैं उनके लिए कठिनाइयां भी ऊंची आती है। कीप प्रैक्टिसिंग। तो आज की जो व्यक्तवाणी है 18/6 की, इसमें बाबा ने ढेर सारे प्रश्न पूछे हैं। अब तक हम लोग टेस्ट दे रहे हैं रोज, NK, DK, JK, VK। तो आज एक नई टेस्ट है, ये बाप दादा की टेस्ट है, सीधा मुरली की शुरुआत, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, 20 प्रश्न है एक के पीछे एक, और इन प्रश्नों के कोई मार्क्स नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ प्रश्न। और ये प्रश्न रोज ही उत्तर देने की कोशिश करना है, ये टेस्ट मुख्य मुरली है, प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर, लगन पर। जैसे वो साइंटिस्ट इन्वेंशन करते हुए खो जाते हैं, वैसे तुम भी शक्तियों की प्रैक्टिस में खो जाओ, अभ्यास में खो जाओ। शक्ति, ज्ञान और योग, एक्सपेरिमेंट। अल्बर्ट आइंस्टाइन 2 बार एंट्रेंस एग्जाम फेल था, फेलियर फेलियर फेलियर। फेल होने के बाद 2 मार्क होते हैं, एक उदास हो जाना और छोड़ देना, और दूसरा मार्क फिर से चालू करना। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कि प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कितनी बार हो जाता है कुछ भी नहीं मिलता, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। सो कीप प्रैक्टिस। बाबा ने कहा है ऊपर ऊपर से नहीं लहराओ, क्या करो गहराई में जाओ, रत्न मिलेंगे। तो मुरली की शुरुआत ही प्रश्नों से है, तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर देना। रूहानी मिलन वाणी से परे की स्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी द्वारा होता है? ऑप्शन ए वाणी से परे स्थिति में, ऑप्शन बी वाणी द्वारा। वाणी द्वारा ए बी, इसमें कोई मार्क्स नहीं है, ये आपको अपने खुद के उत्तर लिखने हैं। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है, वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। स्थिति की बात चल रही है, बाबा की बात नहीं, सुनने की बात नहीं चल रही, स्थिति। प्रिय क्या लगता है, हर एक का अपना अपना हो सकता है, इसलिए इसमें मार्क्स नहीं है। वाणी से परिस्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती है। वह वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। ऑप्शन ए वाणी से परिस्थिति, ऑप्शन बी वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति। बेहद की सेवा वाणी से परिस्थिति द्वारा होती है या वाणी से होती है? ऑप्शन ए वाणी से परिस्थिति द्वारा, वाणी से। ऑप्शन बी, क्या वाणी अच्छी बात नहीं है क्या? अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है, ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है या वाणी में आने से होती है? ऑप्शन ए वाणी से परे की, ऑप्शन बी वाणी में आने से। छठवां क्वेश्चन, सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी सर्व प्राप्ति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परिस्थिति की है वह वाणी में आने की है? ऑप्शन ए वाणी से परिस्थिति, ऑप्शन बी वाणी में आने की। दोनों के अनुभवी दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो? यस नो, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। दोनों के अनुभवी हो और दोनों को जानने वाले हो? यस कि नो? यस। दोनों में से ज्यादा समय किसमें स्थित हो सकते हो? ऑप्शन ए वाणी से परिस्थिति में, ऑप्शन बी वाणी में आने की स्थिति में। कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऑप्शन ए वाणी से परे की स्थिति, ऑप्शन बी वाणी में आने की स्थिति। परे की स्थिति सहज है, ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सक, वह स्थित होने में भी समय निकल जाएगा। हाँ ना? ऑप्शन ए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्योंकि जैसा समय संपन्न होने का समीप आ रहा है तो समय से पहले स्वयं में अविशेषता अनुभव करते हो? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। यस, अंतिम समय फुल स्टॉप होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है, जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण उसी घड़े उस स्थिति में स्थित हो जाना। इस साधन के प्रैक्टिस का को अनुभव में ला रहे हो? प्रैक्टिस है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितना समझते हो? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी लेस देन 50%। कितना? 50। किसमें? 60%। अगला प्रश्न, अभी इस अभ्यास के अंत तक स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। तैयारी हो वह समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। यस अलबेले हो गए। नाम रूप कब विनाश होगा? ऑप्शन ए पहले ही हो गया है, ऑप्शन बी जल्दी ही, ऑप्शन सी कभी नहीं, ऑप्शन डी पता नहीं। पता नहीं, अनिर्णय की अवस्था है। अगला प्रश्न, इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। हाँ जी और ना जी। अगला प्रश्न, आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुराते रहते, सर्व आत्माओं को बार बार संदेश यही देते रहते कि योगी बनो ज्ञानी बनो, और संदेश देने वाले स्वयं को यह संदेश देते हैं? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। सी क्या है? अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए भी बार बार बाबा को चिटकियां डालते रहते, अर्थात शिकायतें बाप दादा को मिलती है, उससे क्या समझा जाए? ऑप्शन ए जो समझना है समझ लो, ऑप्शन बी हमारा टेंशन कम है, ऑप्शन सी हम में हिम्मत कम है, ऑप्शन डी हम अलबेले हैं। ये सारी बातें हैं मुरली में। लास्ट प्रश्न, सर्वशक्तिवान के बच्चे बन, शक्तिहीन आत्मा होना, जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सके वे विश्व के राज्य को कंट्रोल कैसे करेंगे? ऑप्शन ए कर लेंगे, ऑप्शन बी नहीं करेंगे, ऑप्शन सी नहीं करेंगे इसलिए हमें शक्तिशाली बनना है, ऑप्शन डी नहीं करेंगे इसलिए हमें अपने हाल पर छोड़ दो। ये डायरेक्ट एज इट इज प्रश्न है। 10 और 10 20 और भी कुछ है पर वो प्रश्न के रूप में नहीं है, ये मुरली ही वैसे ही शुरू हो रही है। एज इट इज प्रश्न है, जरा भी इधर से उधर नहीं किया है एक्सेप्ट आंसर्स में। तो मुरली की शुरुआत ही प्रश्न 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 से। और इस मुरलियों में बाबा ने बच्चों के दोष युक्ति से बताए हैं। ये सारे प्रश्न पूछे पहले, भाषण देने की ये भी एक टेक्निक है। भाषण की शुरुआत कैसे कैसे की जाती है संसार में, स्पीच की टेक्निक, टेक्निक वन स्टोरी, टेक्निक नंबर टू ऑडियंस से प्रश्न पूछो सीधा, और वो प्रश्न बहुत ही विचित्र प्रश्न हो, हटके प्रश्न हो। भाषण की शुरुआत कैसे की जाती है उसकी ये टेक्निक से। तो फर्स्ट टेक्निक स्टोरी से, सेकंड टेक्निक प्रश्न पूछो ऑडियंस से, थर्ड टेक्निक अपने अनुभव की कहानी से, अपना अनुभव सुनाना चालू करो, फोर्थ टेक्निक उनको पूछो क्या सुनना है, अगली टेक्निक जो टॉपिक है सीधा उसी पे आ जाओ। पर ये भाषण बहुत बोरिंग वाले होते हैं। एक टेक्निक जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो स्पीकर खाली उधर ही देखते रहता है, ऑडियंस की तरफ देखता ही नहीं, ये भी एक टेक्निक है जो अत्यंत बोरिंग है। अगली टेक्निक फन एक्टिविटी से शुरू करो, स्पीच की शुरुआत एक्टिविटी से, पहले ही पहले एक एक्टिविटी कराओ फिर स्पीच पे आ जाओ। पहले कोई टीम एक्टिविटी, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई गेम, पहले वो और फिर स्पीच पे आना। अगली टेक्निक कोई करंट इशू रेज करो जो कि वर्तमान में चल रहा है, जैसे कोविड के समय कोविड का इशू, कोई भूकंप आ गया है तो उस भूकंप का इशू, कुछ भी जो वर्तमान समय चल रहा है वो इशू को रेस करना, ताकि ऑडियंस का उसमें क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो। या फिर एक ऐसा प्रश्न फेंकना ऑडियंस की ओर कि हर एक उत्तर दे, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। एक और टेक्निक है जिसका वीडियो किसी ने भेजा था, परफेक्ट टीचर कौन है, तो पहले उसमें सारे स्टूडेंट्स का वीडियो दिखाया है और फिर लास्ट में टीचर दिखाया है, तो टीचर ने सभी के मोबाइल अपने वहां रखे और हाथ में हथौड़ा है, सब जागे हुए है, अगर कोई उठा तो उसके मोबाइल पर हथौड़ा। देखा होगा आपने ये वीडियो, एक वो टीचर के सामने सारे मोबाइल रखे हुए और सारे स्टूडेंट ऐसे जागृत है, क्योंकि अगर कोई सोया तो हथौड़ा उसके मोबाइल के ऊपर। अगला एमसीक्यू से शुरुआत करो भाषण की। एक होता है प्रश्न पूछना जो ऑडियंस बताएगा, एक है प्रश्न और उसके चार ऑप्शन बताना कि इनमें से तुमको क्या लगता है। अगला ऑडियंस को ही एक एक को कहना सामने आके बताओ, सबसे सहज। तो आज का हमारा टॉपिक है सहनशीलता की शक्ति। हाँ भाई जी आप आओ, आपको क्या लगता है सहनशीलता की शक्ति क्या है? बस एक घंटा पूरा कर लेना, एक एक को बुलाकर क्लास पूरा हुआ। हाँ आपको क्या लगता है, आप थोड़ा बताएंगे, आप थोड़ा ज्यादा हंस रहे हो, आप बताओ। ऑडियंस दो प्रकार की होती है,
एक तो वो होते हैं जो एकदम बीच में हर चीज में प्रश्न आगे हाथ खड़ा करते हैं, मैं बताऊंगा, उनको शांत करना पड़ता है। एक दूसरे होते हैं जो चल रहा है चलने दो, हम पीछे एकदम बिल्कुल। ये ऑडियंस के भी प्रकार है, लेक्चरर के भी प्रकार है, भाषण देने वाले भी। एक वो भाषण होता है जो उनके फिक्स्ड भाषण होते हैं, फिक्स्ड उदाहरण होते हैं, वही उदाहरण पिछले 10 साल से सुना रहे हैं, वही भाषण, ऑडियंस को पहले ही पता है ये क्या बताने वाले हैं। एक वो, एक दूसरा टीचर होता है जो बिल्कुल उसके आंखों के सामने से मक्खी भी नहीं हिलती, एकदम अचल अडोल स्थिति में आते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। और एक तीसरे प्रकार के जो अपने प्रेजेंटेशन को देखते रहते हैं। एक अगला प्रकार है, खाली नीचे ही देखते हैं। एक वो है जो एक जगह पर बैठकर भाषण करता है, दूसरा वो है वो बैठता नहीं है, चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है, कंटिन्यूअस चलते रहता है। एक वो है चलता भी रहता है और नीचे भी घुसता है ऑडियंस के बीच में, इधर उधर से घूमता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, सब तरफ घूमता है। तो ये भाषण के प्रकार है, ऑडियंस के प्रकार, भाषण के प्रकार, श्रोताओं के प्रकार। कोई एक्शन के साथ भाषण करते हैं, कौन सा करना चाहिए आप सोचो, और कोई है कि जो बस बैठ जाते हैं, बस कुछ नहीं करना है, एक ही जगह बैठते हैं, ना कोई प्रेजेंटेशन है ना कुछ है, और पूरी ऑडियंस को हिला देते हैं, ना कोई एक्सप्रेशन करते, ना हाथ हिलाते, ना कुछ करते, ऑडियंस को हिला देते, बोलते कम है, 10-15 मिनट ही बस, उतना काफी है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। बहुत, कोई कोई को 10 बार चिट्ठी भेजनी पड़ती है तभी भी रुकता नहीं, बेल बजती रहती है, बजती रहती है, बजती रहती है, और कोई कोई इतना जल्दी पूरा कर देते हैं कि फिर सोचते अब क्या करना है, आधा घंटा दिया था 20 मिनट में पूरा हो गया, क्या करूं अभी, टाइम पूरा हो गया, अभी कैसे भी खींचो टाइम को। तो बाबा ने भी धड़ाधड़ 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 मुरली की शुरुआत ही प्रश्नों से की है, ये है ये है ये है ये है ये है ये है। तो हमने इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, 10 इधर डाले और 10 इधर डाले। तो ये ग्रुप में पोस्ट किए जाएंगे प्रश्न, तो इनको देखते रहना, इसका कोई मार्क्स वगैरह कुछ नहीं है। करना है तो करो। तो इस मुरली में पहला दोष, प्रयोग नहीं करते तुम, क्या करना है, प्रयोग करना है, बस चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, सब नींद में है। प्रयोग में लाने का दूसरा अटेंशन नहीं रखते, तीसरा हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित हो जाते हैं। हिम्मत श्वास है बाबा ने कहा, हिम्मत तो हारनी नहीं है, कुछ भी हो जाए, कितना भी बार असफलता मिले, अंडर द ब्लजनिंग्स ऑफ चांस आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, माई ब्लड माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड। उस दिन कविता देखी थी ना, मेरा सिर लहू लुहान है परंतु मेरा झुका नहीं है, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप। हिम्मतहीन बन जाते, बाप के ऊपर ही छोड़ देते और स्वयं अलबेले बन जाते, आप ही करो, आप ही शक्ति दो, आप ही आशीर्वाद करो। अगला, स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, मतलब अभ्यास में नहीं लगाते, सिर्फ वर्णन करने तक रह जाते, वर्णन बहुत अच्छा अच्छा करते, अंतर्मुखी हो हर शक्ति की धारणा करने से अभ्यास में नहीं लाते, धारण करने के अभ्यास में नहीं लाते, हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए, एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ, वहीं तक नहीं छोड़ दो, उसके विस्तार में जाओ, उसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो, ये क्यों कहा है, स्वीकार तो बिल्कुल ही नहीं करना है किसी ने कुछ कहा, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन समवेयर, क्योंकि वो कहीं लिखा है। डू नॉट एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज बीइंग स्पेड सेड बाय सम ग्रेट मैन, कोई महान आत्मा ने उसको कहा है, या भगवान ने ही कहा है, किसी धर्मात्मा ने, तीर्थंकर ने, बुद्ध ने, या किसी ईश्वर पुत्र ने, किसी अवतार ने कहा है, इसलिए नहीं. डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन हैलोड बाय ट्रेडिशंस, परंपरा से चला आ रहा है. यही सत्य है. चैलेंज, फाइंड द ट्रूथ योरसेल्फ, स्वयं की खोज करो. ये क्यों मान लिया मैं आत्मा हूं, अनुभव तो हुआ नहीं, फिर माना क्यों? मुरली में आया इसलिए. सर्च, रिसर्च, शोध करो, संशोधन करो. स्वीकार करना ही नहीं. जो जिसकी यात्रा अध्यात्म की निश्चय से होती है, वो हो सकता है संशय में एंड हो, पर जिसकी यात्रा संशय से शुरू होती है, वो जरूर निश्चय तक पहुंचता है. बिगिन विद डाउट. सीधा फेथ से, फेथ एक अलग शब्द है, पर डाउट से शुरू नहीं करते. पहले ही कहते हाँ हाँ हमने तो सब मान लिया, यही भगवान भी है, ये आत्मा भी हो, ये भी हो, और बाद में डगमग हो जाते. बिगिन विद डाउट. दो शब्द है भाषा में, दोनों में बहुत अंतर है, संदेह और संशय. क्या अंतर है? यात्रा संदेह से करना है, संशय से नहीं कर रहे हम. संशय एक अलग ही चीज है. संदेह, संदेह से जो आत्मा चालू करता है वो संपूर्ण निश्चय तक पहुंच सकता है, पर जो विश्वास से कर लेता है वो विश्वास अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है. संदेह और संशय अलग अलग. संशय निगेटिव है और संदेह पॉजिटिव है. संदेह अर्थात क्यूरियोसिटी. संदेह में उत्सुकता है, उत्कुंठा है, इनक्विजिटिवनेस. आई वॉन्ट टू नो वॉट इज दिस. अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः तो भक्ति जिज्ञासा, अतः तो ज्ञान जिज्ञासा. जितने भी उपनिषद लिखे हैं उनकी शुरुआत कहां से है पता है? अब से शुरुआत है. जैसे पहले कुछ बता रहे थे, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र है शंकराचार्य का, उसकी शुरुआत वहां से है. कोई किताब की शुरुआत ऐसे नहीं होती है. शुरुआत कैसे होती है? कुछ और चीज से. पर यहां शुरुआत कैसे? अब ब्रह्म क्या है ये जानो. अर्थात अब से पहले तुमने बाकी सब जान लिया, भक्ति को जान लिया, कर्म को जान लिया, अब क्या है ये जानो. अथ तो जिज्ञासा. तो संदेह अर्थात जिज्ञासा, ये है क्या? हम क्यों पढ़े? फालतू में टाइम वेस्ट. अव्यक्त मुरलिया, उसे मिलता तो कुछ नहीं, दिमाग के ऊपर से जाती आती तो. मार्क्स मिलने की भी खुशी अल्पकाल की है, सब अल्पकाल का है, मिलता कुछ नहीं. पवित्रता पवित्रता पवित्रता, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य. अरे क्या ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते संसार के लोग खुश दिखते हैं. एक्सप्लोर. स्वीकार कुछ भी नहीं करना है. डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग. क्या करो? खोज करो, संशोधन करो. ए इक्वल टू बी, ये स्वीकार नहीं करो. साइंस में, मैथमेटिक्स में ए इक्वल टू बी का फॉर्मूला क्या है? शुरुआत कहां से होती है? हाइपोथेसिस. ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहां से शुरू होता है. फिर करते 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 वो निष्कर्ष निकालते हैं, नहीं 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 ए इक्वल टू बी. ये ऐसा होता है मैथ्स. पहले ही स्वीकार कर लिया हाँ हाँ ए इक्वल टू बी, फिर कुछ नहीं मिलता है, डल हो जाती है चेतना. मुरली की लाइन लो, एक एक शब्द लो, एक्सप्लोर करो, इधर से देखो, उधर से, बाएं से, दाएं से, आगे से, पीछे से. ये प्यूरिटी, प्यूरिटी क्या है? शास्त्र में दिखा है शूर्प नखा आती है राम के पास, वो कहती है मुझे प्रस्ताव रख. राम कहता है ये तुम्हारा प्रस्ताव काम का प्रस्ताव है, इसलिए मेरी नाम में धर्म छिपा है. वो कहती है कि मुझसे शादी करो, वो कहता है ऑलरेडी मैरिड, शी इज देयर, बाजू में ही है. वो कहता है ये स्त्री है, ये मनुष्य है, इसका यौवन और इसकी सुंदरता उम्र के साथ ढल जाएगी, नष्ट हो जाएगी. मैं सर्वांग सुंदर हूं, मैं ऐसी ही रहूंगी. राक्षसी नहीं है, मैं ऐसी ही रहूंगी. राम कहता है प्रेम का शरीर से और यौवन से कोई संबंध नहीं है. मेरी आत्मा सीता की आत्मा से प्रेम करती है। प्रेम का संबंध शरीर से कहाँ है, ना ही युद्ध से, फुलनेस से है, वो तो आत्मा आत्मा से प्रेम कर रही है। इसलिए वो कहते हैं आई एम नॉट द राइट कैंडिडेट। उधर बाजू में लक्ष्मण है, वो अभी अभी आया है, उससे पूछो। वो कहती हाँ ये तो अकेला है क्योंकि आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, वो खाली है। वो उसके पास जाती है, लक्ष्मण को फिर से अपना प्रणय निवेदन। लक्ष्मण कहता है कि कमाल है तुम्हारी, अभी अभी तुम उससे मोहित हो गई थी, अभी मेरे पास आ गई पर तुम तो इसमें मेरे से, तुम मेरी संगिनी बन सकती हो, पर एक खतरा है। वो कहती है मैं तुमको राजा बना दूंगी पूरी किष्किंधा का। वो कहता है इसमें खतरा है क्योंकि मैं उनका दास हूं तो तुम अगर मेरी भारिया बनते हो तो तुम, हम दोनों को उन दोनों की सेवा करनी पड़ेगी इसलिए तो चिढ़ती है। सीता को मारने दौड़ती है। तो शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान क्या कहता है, उन दोनों को समन्वय। भगवान ने कहानियां उठाई है शास्त्रों की और अपनी पॉइंट्स को टंगाई है। ये नहीं कह रहा है वो कि ऐसी कोई रामायण थी, परंतु उदाहरण सारे भक्ति के ही है। सारी मुरली में रावण शब्द आता है, सीता शब्द, राम शब्द, द्रौपदी, सारे शूर्पणखा से लेके जरासंध से लेके कीचक, कुंभकर्ण, सारे शब्द आते रहते। तो बाबा ने कहा ये उनका वास्तविक अर्थ है, तुम हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा तुम्हारा श्वास है। उनको अलग अर्थों में समझना, मुरली को पढ़ते हुए उसके गहरे अर्थ। तो क्या कहा, योग में क्या करो, प्रयोग करो। वो अलग अलग नाम दिए इस मुरली में, राजयोग है, परमात्मा योग, सहज योग है। क्या सहज योग का अनुभव किया है, राजयोग का अनुभव किया, राजयोग का किया पर सहज योग का नहीं किया, मतलब संपूर्ण योगी नहीं बने। एक बार होमवर्क दिया था ना राजयोग के, क्या क्या नाम है, कितने नाम है। अभ्यास कम करते व्यास बन गए, जो वर्णन करते वह सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाओ। हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का, हर ज्ञान की पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यास ही आत्मा, लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। लगन की अग्नि क्या कर दिए, विघ्न को दूर से ही भस्म कर दिए। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठो, प्रैक्टिस ऑफ लेबोरेटरी की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लेबोरेटरी, प्रैक्टिस लैब। एक्सपेरिमेंट करते हैं ना साइंटिस्ट, क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब, फिर इधर का केमिकल इसमें डालता है, उसमें इधर, फिर लाल पीला नीला होता है, ब्लास्ट होता है, कई बार इंजुरीज होती है। कितने मेडिकल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन इन्वेंट करने से पहले खुद को इंजेक्ट किया, किसी की डेथ्स हो गई, कितने लोगों की। तो परंतु मानवता के लिए उन्होंने बहुत सारी खोजें जो की साइंटिस्ट ने। कल भी हमने साइंटिस्ट के बारे में देखा था, कितनी लगन रहती है। बाबा ने उनको कहा सच्ची सेवा दे, उनसे सीखो, कितने खोए हुए रहते हो, निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण के लिए सेवा करते, विश्व को स्वर्ग बनाना चाहते हैं और वो इनडायरेक्टली तुम्हारी सेवा कर रहे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रही हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त कर सकेंगे, स्वयं भी समर्थ बनो। ये स्टेप्स है प्रैक्टिस की। कोई भी स्किल, चाहे ज्ञान में आगे बढ़ना है या योग में आगे बढ़ना है या धारणा में आगे बढ़ना है, सेवाओं में आगे बढ़ना है, किसी कला में आगे बढ़ना है, निपुण होना है, निष्णात होना है, कोई भी कला संसार की, कोई भी, चाहे जिम हो, चाहे जिम्नास्टिक हो, चाहे रनिंग हो, कुछ भी, चाहे कंप्यूटर हो, एनीथिंग, सबसे पहला गोल, गोल डिसाइड करो। गोल नहीं डिसाइड करते वैसे ही चले गए तो कुछ नहीं होगा। डिसाइड द गोल कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, कैसे करना है, कैसे करूं, ये मेरा लक्ष्य क्या है। दूसरा, समय सारिणी बनाना है, शेड्यूल, कितना दिनों में करना है। कोई भाषा सीखनी है, ऐसा नहीं कि आज से भाषा सीखना चालू करे तो सीख ही रहे। सेट करो टाइम टेबल, 30 डेज। बच्चों को एक होमवर्क दिया था ना वर्ड्स का, हर दिन कितने वर्ड निकालने के लिए कहा था, 10। किया क्या? न्यू वर्ड्स, कुछ भी, चाहे भाषा हो या कुछ हो, कुछ भी, पर नया नया कुछ कुछ सीखते रहना है हर दिन। शेड्यूल बनाना, वार्म अप एंड रिव्यू। वार्म अप अर्थात प्रारंभिक अभ्यास, छोटा छोटा अभ्यास ले लेना है, इनिशियल, छोटी छोटी प्रैक्टिस। अभी मैराथन रन करना है तो सीधा मैराथन के दिन 21 किलोमीटर भागेंगे तो अगले एक व्यक्ति छुट्टी लेता है ऑफिस से और कहता है मुझे माउंटेनियरिंग करनी है, पहाड़ों पर चढ़ना है। एक महीने के बाद आता है, बोले क्या हुआ, तो कहता है कैसी रही ट्रिप, तो कहता है ट्रिप तो अच्छी रही पर पहले दिन ही गिर गया। तो फिर बाकी कैसा रहा, वो कहता है पहले दिन गिर गया, बाकी 29 डेज हॉस्पिटल में बिताए, अभी आया हूं। माउंटेनियरिंग ट्रिप पूरी हुई। प्रैक्टिस, एक एक किलोमीटर, दो दो किलोमीटर पर डे, फिर 5 किलोमीटर पर डे, फिर 10K, फिर 15K, फिर 20K, 18K, एंड देन 21K। प्रैक्टिस 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 आए, प्रैक्टिस है प्रैक्टिस है प्रैक्टिस है प्रैक्टिस है प्रैक्टिस, भूला तो नहीं है ना। याद है ना सबको, एक ही बात साफ, बाकी सब भूल जाना एक छोड़ के, आई रिमेम्बर एवरीथिंग, याद है ना। हाँ, फिर फोकस ऑन द टेक्निक। अभी कौन सी टेक्निक से कर रहे हो, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कोई भी इम्परफेक्ट करते रहोगे तो कभी परफेक्शन नहीं आएगा। भाषा सीखनी है तो परफेक्ट प्रैक्टिस करो, उन जो वो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके साथ मिलो। लोग विदेश जाते हैं, गुजरात के लोग विदेश गए फॉर एग्जाम्पल, यूके में गए, तो वहां पर इंग्लिश कभी नहीं सीख पाते, क्यों, क्योंकि वहां गुजरातियों को ढूंढ लेते हैं और उनके साथ गुजराती चालू हो जाती है। पंजाबी गए कनाडा में तो वहां पे कनाडा में पंजाबियों को ढूंढ लेते हैं, बस एक पंजाब की कॉलोनी बन जाती। महाराष्ट्र वाले गए तो महाराष्ट्रियन मराठी वाले ढूंढ लेते हैं, बंगाली वाले गए तो बंगाली बोलने वाले ढूंढ लेते हैं, वो भाषा से अनभिज्ञ रह जाते, क्योंकि नई भाषा सीखना एक चैलेंज है। बुद्धि कहती है ना 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 ना, हमारा लक्ष्य थोड़ी ना ये है भाषा विषय, वी हैव टू मेक एफर्ट्स, बिना उसके नहीं होता है। कोई भी चीज मास्टरी करनी है तो क्या चाहिए, टेक्निक चाहिए उसकी, हर चीज की टेक्निक है। अगर एक व्यक्ति ने सीखा तो हम भी सीख सकते। डाइट हो, कुछ भी हो, डाइट भी एक टेक्निक है, ऐसे नहीं कि अचानक कोई फ्रूटेरियन बन जाता है, अचानक एक दिन कोई लिक्विडेरियन बन जाता है, ब्रेदेरियन बन जाता है, प्राणिक यात्रा पर आ जाता है। इट इज अ टेक्निक, हर व्यक्ति उससे गुजरता है, हर एक को पता है। 6 महीना फ्रूट खाओ, उसके बाद एक बार कुक्ड खा लो, खत्म। कुक्ड कुक्ड को खींचता है, उससे निकलने को 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते, 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, फिर वो केवल याद रह जाती है कि हाँ हमने भी फ्रूट खाया था, बहुत अच्छा था, जो खाया था 1-3 दिन जो किया था ना अब तक याद है, बाद में फिर कभी नहीं कर पाए। टेक्निक, फेलियर, और फेलियर तो होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि वो भी अनुभव चाहिए, गिरने का, खाली चढ़ने का उड़ने का अनुभव नहीं चाहिए, गिरने का अनुभव चाहिए। अहंकार को ऐसी चोट लगनी चाहिए खतरनाक, तिलमिला उठे आत्मा। निरंकारिता के लिए अहंकार की चोट से को चोट से गुजरना होगा, तब निरंकारिता आती है, नहीं तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, सब मूर्ख है यहां। जब स्वयं की मूर्खता सबके सामने प्रकट हो जाए तब निरंकारिता कभी। प्रैक्टिस विद वेरिएशन, प्रैक्टिस भी कैसे करना है, विविधता के साथ, नई नई प्रैक्टिस करनी, एक ही प्रैक्टिस नहीं करते रहना है, अलग अलग प्रैक्टिस। लकीर के फकीर मत बन जाना, जो जितना हमको पता है हमने बस इतना ही किया, ये जाके लेके आओ मार्केट से, उतना ही लेके आए। फिर दूसरी चीज लेने गए, वहां वो भी मिलती और वो चाहिए, इसके लिए बुद्धि नहीं चलाई। प्रैक्टिस विथ वेरिएशन, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट, फिर सोचो, रिफ्लेक्ट एनालाइज करो, ये बहुत जरूरी है। ट्रैक प्रोग्रेस, और वो लिख के रखना है, जैसे वो चार्ट दिया है हर चीज का, बाबा ने चार्ट 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 कहा है। अमृत वेले का चार्ट 11 पॉइंट्स है, कर रहे हैं ना सब, आज की क्या सुबह दिया सबको सकाश, सारी 55 जगह है और ये आत्मा है। बोलो फिर करो, हर चीज में हाँ हाँ नहीं बोलो, बोलो नहीं किया है अभी करेंगे, कुछ तो किया है, और लास्ट में मोटिवेटेड। मोटिवेशन खोना नहीं है, इसलिए उन लोगों को पढ़ते रहना है, संग में रहना है जो मोटिवेटेड है। सभी मनुष्य सबके जीवन में उदासी आती है, निराशा आती है, दुख होता है, फील होता है, हर्ट होते हैं, फिर भी दुखी नहीं होना। हमें याद है जब हम मुंबई पहुंचे थे यहां से, तो बहुत पहले 2000, तो जो जिनसे मिले थे डॉक्टर से, उन्होंने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि तुमको कुछ भी नहीं आता, तुम थोड़ी डिसाइड करोगे तुम क्या करना है। जो भिखारी होता है वो चूजर नहीं होता है, जो दिया जाए वो करो। तो चोट थोड़ी लगनी चाहिए, चोट लगने के बाद ही और जैसे सब अपने अनुभव सुना रहे, तो मुझे भी एक अनुभव याद आ रहा है। जब हम नए नए आए थे यहाँ पर 2003 में, तो तब प्रताप सर ने भाई साहब से मिलाया था, निर्वेर भाई साहब से, और कहा था ये नए डॉक्टर है जो अभी भी ज्वाइन किया। जो हमारा फर्स्ट डे था मधुबन का, तो यहाँ सुशील भाई बैठे थे बाजू में और श्रीमंत सर ओम शांति भवन में, तो हमको तो ये नहीं पता ये क्या है, ये कहाँ है, तो हम तो जाके बैठ गए बस। दादी प्रकाशमणि आई और सीधा मुरली चली, मुरली क्या होती है, मुरली क्या है, कुछ पता नहीं। और दादी ने बड़ा मीठे बच्चे, अब तक जो पढ़ा है वो भूल जाओ। हम पीछे देखने लगे किसको कह रहे, हमें कह रहे हैं किसी और को कह रहे। फर्स्ट डे हॉस्पिटल का रामनाथ भाई एडमिट हो गए, सांस फूलने लगी, तो उनसे मिलने दादी जानकी आई, तो वो गेट पर थे, दादी जानकी मिले और बाहर निकले, हमारा फर्स्ट डे था। तो प्रताप सर ने कहा ये हमारे नए डॉक्टर है। दादी ऐसा नहीं, अच्छा ये अच्छा फिर याद रखा, अच्छा ये है सच्चा सच्चा राज ऋषि। फिर हमने पूछा ये कौन है, यही नहीं पता ये कौन है, ये जगह कौन सी है, ये क्या है, कुछ भी पता नहीं था। उस समय इतना नशा था, इतना नशा था कि हम सुबह सुबह आ जाते थे, श्रीमंत सर थे उनके साथ, 1:30 बजे निकलते थे, 2 बजे पहुंचते थे, तो संजय भाई होते थे, अभी तो शरीर छोड़ दिया, तो बाबा की कुटिया खुद ही खोलते थे, तो उसमें से ऐसा लाइट लाइट आते रहता था, बहुत ज्यादा पावर। और फिर एक बार नीचे निर्वय भाई साहब से मिले थे, तो उनसे हमने पूछा था कि अभी हमको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था एक बार तो हमको पीजी मिल गई थी, पर वैराग इतना ज्यादा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन की एमडी की सीट ठुकरा दी थी। पिताजी गए थे, ली थी एडमिशन, पर हम गए नहीं, गवर्नमेंट की एक सीट गई। अब गवर्नमेंट की सीट ले या भगवान को पाए, क्या करे। इतना भयंकर वैराग्य, इतना वैराग्य, इतना वैराग्य कि कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ का, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, सारे सर्टिफिकेट सब कुछ जलाने को तैयार थे। वो सब छुपा दिए घर वालों ने। तो हमने भाई साहब से पूछा था ऐसे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करो। ये बात कब की है? नवंबर 2003 हम आए थे बाबा से मिलन में फर्स्ट टाइम 30 नवंबर, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में आए 15 दिसंबर, यहाँ 1.5 साल थे लगभग, 31 मई तक 2005 तक। इस बीच भाई साहब से एक दो बार मिलना हुआ तो उन्होंने कहा था कि तुम जाकर फिर से पढ़ाई करो, तो हम गए। 5 साल 6 मास बाहर रहे अलग अलग जगह पर, मुंबई में थे बहुत समय। और जब मुंबई जाने का समय था तो भाई साहब ने एक लेटर दिया था, इस डॉक्टर से जाके मिलो। और जब उस डॉक्टर से मिले तो उसी डॉक्टर ने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, सीधा ठीक स्थान पर भेजा, एकदम चोट लगी। फिर मुंबई गए, फिर मुंबई में BACS हॉस्पिटल में थे, जो कुछ मेडिकल का सीखा होगा वो वहीं सीखा। और हमें याद है जब हम बीच बीच में आते रहते थे तो इतना ये था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं सेवा, कौन सी सेवा करूं, मुझे मुझे बहन बनना है, ये जो बहनेट सेवा करती है ना वो मुझे बनना है, कोर्स कराना, ये सब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने भाई साहब को कहा था कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा था और वो एक वाक्य हमें पूरा 5 साल 6 मास तक चला, वहां बैठकर यहां क्या करना है इसकी प्लानिंग करो। मधुबन में तुम अभी आए नहीं हो पर वहीं बैठे बैठे यहां तुम क्या क्या करोगे इसके विजन्स क्रिएट करो। ये एक बहुत पावरफुल बात उन्होंने कही थी और ये हमारे साथ लंबा समय तक चली। और एक बार फिर 2010 में भाई साहब खुद एडमिट थे और हम ही नाइट ड्यूटी में थे, बाईपास हुआ था, पूरी रात जागे थे, शुगर बहुत अचानक से शुगर बढ़ गया था। और पर एक बात और सीखने को मिली कि इतनी बड़ी सर्जरी हुई उसका वो एक दिन छोड़ के उन्होंने खुद ही हमको बताया था कमरे में कि मेरे जीवन में ये पहला दिन है जिस दिन मैंने मुरली नहीं पढ़ी, वो भी क्योंकि बाईपास हो गया। उसके अगले दिन थोड़ा सा आईसीयू में थे हम, नाइट में थे, तो वो एक ही दिन था सुबह का जिस दिन मुरली नहीं पढ़ी। फिर दूसरे दिन देखा तो मुरली पढ़ रहे थे, दूसरे दिन तो शिफ्ट भी हो गए। तो ये बहुत प्रेरणा वाली बात थी हमारे लिए क्योंकि हम उस समय अपने संघर्ष की अवस्था में थे बाहर, पर जब भी आते थे मिलते थे और कई बार मिले। और जब से यहाँ आए 10-10-10 10 अक्टूबर 2010 वापस आ गए फिर 5 साल 6 मास के बाद, तब से कई बार कई कई बार मिलना हुआ। एक चीज उनमें हमने देखी थी, रहम दिल, बिल्कुल इतना रहम कोई भी हो कैसा भी हो। और दूसरा एक शालीनता, एक रॉयल्टी, जैसे राजा होता है ना, एक राजा एकदम रिलैक्स, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम कूल कूल कूल। एक बार गए थे, एक बहन से बातें हो रही थी उनकी, वो बहन इतना चिल्ला रही थी और मोबाइल भी लाउड स्पीकर मोड पर था, वो सुन रहे थे बस। सुनते सुनते फिर वो मोहन भाई आए, उनको दे दिया, फिर हमसे कहा हाँ जी डॉक्टर साहब कहिए एकदम कूल तो कई बार मिलना हुआ और बहुत अलौकिकता, बहुत रूहानियत, बहुत प्यार। कई बार हम लोग उधर पिकनिक के लिए जाते थे नीचे, और जब आते थे आते आते मिलते थे तब भी बहुत मतलब प्यार से, और कई बार हेल्थ रिलेटेड के लिए बहुत बार बुलाते तब जाते थे। एक बार याद है यहाँ से अहमदाबाद भी लेके गए थे हम, जब वो अचानक वेंटिलेटर पर डालना पड़ा था 2011 या 12 में। तो ऐसे जो भी इस यज्ञ की महान आत्माएं हैं, महान हस्तियां हैं, उनके चरित्र से, उनके जीवन से, उनकी वाणी से, उनके बोल से, उनके संकल्पों में कितना पावर होता है, कितनी शक्ति होती है। जब भी दादी जानकी से मिलने जाते थे, फिर भाई साहब से मिलने जाते थे, तो फिर पूछते थे दादी का क्या है, कैसे है, क्या है, पूरा डिटेल, अपने बारे में बाद में, पहले दादी का पूछते थे। कुछ दादी से मिलने जाते थे, गुलजार दादी के लिए एक बार मुंबई गए थे, तब भी मिले थे। तो जितनी भी मुलाकातें हुई, उन हर मुलाकात में कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि व्यक्ति कितनी अस्थिर परिस्थितियों में भी कितना अचल रहता है, कितना स्थिर रहता है, और रहम का तो कोई हिसाब ही नहीं है। चाहे कोई कैसा भी हो, कितनी भी गलती हो, अपकारियों पर भी उपकार, और बहुत ज्यादा निर्माण और बहुत मदद। जब हम नए नए ज्वाइन किए, फिर मिलने गए, वो जानते तो पहले से ही थे, कई बार मिल चुके थे, तो बहुत मतलब अभी हम इतने नए थे, कुछ हमको ज्यादा पता नहीं था, तो कहाँ थे हम तो जो भी महान आत्माएं हैं, सीनियर्स हैं, उनके प्रति एक समर्पण भाव हो तो ही हम सीख सकते हैं उनसे। यदि हम उनसे आर्गुमेंट्स करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, तो उनसे हम कभी नहीं सीख पाते, या उनका जो विश्वास हमें प्राप्त होता है वो कभी नहीं प्राप्त होता है। ये भी एक सूक्ष्म बात है सीखने की। जो भी हमारे सीनियर्स है, चाहे उम्र में छोटे ही क्यों ना, परंतु पद में यदि सीनियर है, तो उनके प्रति क्या हो, सम्मान का भाव हो, रिस्पेक्ट का भाव हो, तो हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। तो जो हम बता रहे थे कि हम जब नए नए आए थे और जब मिलने गए थे, तो इतनी महिमा कर रहे थे, इतनी महिमा कर रहे थे, हमको लग रहा था हमारी इतनी महिमा क्यों कर रहे, हम इस महिमा के योग्य नहीं है। परंतु वो जैसे सम्मान दे रहे, तुम ये करो, तुम्हें ऐसा करना है, तुम अभी यहां आए हो, प्रकाश बनो, वो वाक्य हमें याद रहे, और सब यज्ञ को प्रकाशित करो। तो बड़े लोग जो भी बोलते हैं, उसमें फरदान छिपा हुआ होता है, तो उनसे हम सीखते रहते हैं। और हम ये भी कहेंगे, जैसे कि युग का अंत हुआ, यज्ञ में एक नया युग चालू हुआ, आगे क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं, परंतु महान हस्तियों का यज्ञ से जाना, जरूर कोई ना कोई हलचल लाएगा, नया परिवर्तन लाएगा। तो हम सब सज्ज हैं, अपनी तैयारियां है उस परिवर्तन के लिए, समय ही सिखाएगा। तो आज तो भाई साहब के पार्थिव शरीर को ऊपर लाएंगे, तो सभी यहाँ जो अभी उपस्थित बैठे हैं और जो ऑनलाइन है, सभी योग युक्त बैठेंगे और ऐसी महान विभूति को, ऐसे यज्ञ के आधार स्तंभ को, रहम का सागर, बाप समान आत्मा, जिस ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ, उस ऊंचाई तक हम भी पहुंचे, उस आत्मा को शक्तिशाली किरने देते हुए योग का अभ्यास करेंगे। जस्ट साइलेंट, नो म्यूजिक।
तूफानों में खोना चाहूं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते भयभीत करती पल पल बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया निशब्द फैली छाया। तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा, ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे जीवन की राह तुम बाबा। जीने का सहारा बाबा हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा।